राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है एकादशी के पुण्य तिथि, भगवान माधव की प्रिय तिथि, माधव तिथि भक्ति जननी, ये भक्ति को जन्म देने वाली एकादशी का बहुत पुण्य का दिन है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, श्रील प्रभुपाद के स्कान के बहुत बड़े हरे भरे वृक्ष की छाया में बैठकर आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु की सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं उसके अंतर्गत कुछ श्रवण करेंगे, क्योंकि ये पहले हमने एक बार प्रवचन यहां किया है फ्राइडे नाइट को, शुक्रवार को एक बार हमने सत्संग किया था, इसलिए हम थोड़ा सा पहले संक्षेप आपको बता के फिर आगे से बोलना शुरू करेंगे। बात ये हम बताई थी कि श्री चेतन, पहले बात हमने ऐसे शुरू की थी कि भगवान धरती के ऊपर अवतार लेता क्यों है। भगवान इसलिए धरती के ऊपर अवतार लेता है क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करता है और हम भटक जाते हैं, हम भूले भटकों को अपनी ओर फिर वापस आकर्षण करने के लिए भगवान अवतार लेता है। और दूसरी बात हमने कही थी, इस दुनिया के अंदर हमारे बंधन का कारण हमारे पुत्र परिवार का मोह है, घर परिवार का मोह है, इसलिए भगवान छोटे बन के जब धरती के ऊपर आते हैं कहते हैं ये सारे संबंध जो दुनिया में तुमको बंधन में डालते मेरे साथ कर लो, मेरे को बेटा बना लो, मेरे को मित्र बना लो, मेरे को मेरे से वही संबंध वही रिलेशन मेरे से कर लो, अगर मुझसे ऐसा ही रिलेशन करोगे तो तू बंधन से छूट जाएगा। दुनिया का वही संबंध तेरे को बंधन में डालता है, मेरे से संबंध करोगे तो मुक्त हो जाओगे। ये भगवान के दूसरा उद्देश्य धरती के ऊपर आने का। और तीसरा भगवान का धरती के ऊपर आने का उद्देश्य, बहुत मधुर मधुर लीलाएं ऐसी करके जाते हैं जिनका श्रवण करते भगवान के जाने के बाद अनंत काल तक लोग आनंद से उसका श्रवण करते हैं। जैसे आज 500 सालों के बाद चैतन्य महाप्रभु की लीला का आप श्रवण कर रहे हैं, 5000 साल के बाद सुबह भागवत सुन रहे थे, तो ऐसी सुंदर लीलाएं भगवान करके जाते हैं जिसका श्रवण करने से हमारा हृदय गदगद हो जाता है, दुख से हम थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते हैं, जब तक सुनते हैं तब तक मुक्त हो जाते हैं। तो ये दूसरा तीसरा भगवान के। लेकिन भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो भगवान लीला अपने में उन्हीं लोगों को साथ लेते लेकर आते हैं जो भगवान के अपने परिकर और भक्त होते हैं। जैसे आपके घर के अंदर आपको कोई शादी करी होगी तो अपने परिवार वालों को बुलाएंगे ना, बाजार से तो किसी को नहीं बुलाएंगे, समझ रहे हैं। तो जब कोई अंतरंग रिश्ते का घर का काम करना है तो अपने लोगों से बात करेंगे, हरेक नहीं आएंगे। तो इसका मतलब भगवान जब आते हैं तो उनके साथ उनका पूरा परिकर गण आते हैं, एंटोरेज पूरा आता है, वो अकेले नहीं आते हैं, अपने पूरे भक्तों के संग में आते हैं। उनकी जो भी लीला होती है, हमने ये बात कही थी फिर रिपीट कर रहे हैं, उनको लड़ाई भी करनी होती है तो अपने ही धाम से किसी को लड़ने के लिए लाते हैं, यहाँ के किसी गुंडे के साथ लड़ने के लिए भगवान नहीं आते हैं, पुलिस बहुत है इससे लड़ने के लिए, भगवान कोई पुलिस वाले थोड़ी है कि यहाँ आके किसी को बंदूक से मारेंगे, ये काम भगवान का नहीं है। उनको जब लड़ाई भी करनी है तो जय विजय को नीचे भेज दिया, तुम रावण बन के आना, हम तुम्हारे साथ राम जी के लड़ाई करेंगे। तो अपने ही भक्त को लाए थे कि तुम ये रोल करके दिखाओ कि बदमाश कैसा होता है एक्सट्रीमली, तो ऐसे साधारण को दुनिया का आदमी नहीं कर सकता है। तो भगवान जब आते हैं तो अपने एंटोरेज को साथ लाते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए तभी अपने भक्तों को साथ लाए, तो उन भक्तों को निमित्त बनाकर, जैसे भगवद गीता में अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने भगवद गीता का संदेश दिया। अब भगवद गीता के संदेश के लिए आश्चर्य की बात है, किसी सन्यासी को भी नहीं चुना, किसी ब्राह्मण को भी नहीं चुना, एक गृहस्थी को चुना, और गृहस्थी के बाद एक राजपुत्र को चुना, बड़ा आश्चर्य नहीं लगता है। इसलिए कोई ऐसे सन्यासी नहीं कहे कि भगवद गीता हमारे लिए आई है, नहीं तुम्हारे को नहीं दी थी भाई भगवान ने, ब्राह्मण ऐसे कहे नहीं हम ही भगवद गीता पढ़ेंगे, नहीं तुमको नहीं दी थी, अर्जुन को दी थी, क्षत्रिय को दी थी। तो बहुत बड़ा भगवान विलक्षण कुछ ऐसा काम करते हैं। राजा को क्यों दी थी, क्योंकि आचरण राजा करेगा तो प्रजा सुधरेगी, ब्राह्मण अपने घर में बैठ के जब करेगा तो क्या कहूंगा, राजा को आचरण करने से दुनिया सुधरेगी। तो एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषि उधर लिखा है, राज ऋषियों को ये हमने शिक्षा दी थी ताकि ये उदाहरण बने संसार में। तो ऐसे जैसे अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया और मोह में डाला, अर्जुन को कोई संसार का मोह नहीं था। अर्जुन 13 साल कौरवों से लड़ाई की तैयारी कर रहा था, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रहा था, देवताओं के पास जाके अस्त्र शस्त्र ले आया, तो लड़ाई के लिए तो तैयारी होते तैयार थी, 13 साल से तैयारी कर रहा था, 13 ईयर्स। और 13 मिनट्स में बोलता लड़ाई नहीं करूंगा, ये कैसे हो सकता है? 13 मिनट्स के कारण शंख बजाया तो इतना टाइम तो लग ही गया होगा ना। अब बोलता मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये कोई बात है? भगवान ने कहा अच्छी अच्छी बात है, मेरे को घर से बुला के लाया है कि लड़ाई करूंगा, बोलता कि लड़ाई नहीं करूंगा। तो अर्जुन को मोह में भगवान ने डाला, अर्जुन तो लड़ाई की तैयारी करके आया। भगवद गीता के पहले अध्याय का 25वां श्लोक देखना, पहले अध्याय का 25वां श्लोक देखेंगे ना, तो उसमें अर्जुन ने जब कहा कि सेनियों मध्योर दोनों सेनाओं के बीच में उपस्थित हुआ, रथ में रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, तो कृष्ण ने पता है कहां जाके खड़ा किया? भीष्म द्रोण पर मुक्त सर्वेशम च महीक्षताम, जाके भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। कर दिया होता दुर्योधन के सामने खड़ा तो अर्जुन तो कुछ नहीं पूछता, बाहर ही चला था। नहीं, भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करने के बाद पता क्या बोला? पश्यताम कुरुने की, देखो तेरे तुम्हारे अपने पूर्वों की और कोई नहीं दूसरा। भगवान ने कहा देखो ये तुम्हारे रिश्तेदार सामने खड़े कुरुवंशी रहे, पश्यताम कुरुमति, ये जो भगवान ने उंगली उठा के ऐसे कहा देखो ये तुम्हारे अपने उंगली बड़ा खड़ा है, भीष्म पिता मैं ध्यान देखो ये सब इसके इसके बाद के पैसा होंगे हैं, ये तुम्हारे सामने। अब भगवान ने क्या इशारा किया? अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया, उसी श्लोक के बाद अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुन को ये स्थिति में भगवान ने डाला, भगवान ने अर्जुन को डाला, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के साथ लीला करने के लिए आया था, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आया था। तो भगवान जब आते हैं तो अपने भक्तों को लीला में भाग लेने के लिए साथ लाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो सनातन रूप गोस्वामी इन गोस्वामियों को अपनी लीला में भाग लेने के लिए आए थे। तो सनातन गोस्वामी उस वक्त के बंगाल के नवाब हुसैन शाह के मुख्यमंत्री थे, और उस पद को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र, चैतन्य महाप्रभु कहे थे जगन्नाथपुरी से जा रहा हूं वृंदावन, लेकिन चले गए बंगाल। क्योंकि वृंदावन का तो मैं हूं भगवान ने कहा, लेकिन वृंदावन दुनिया को जो दिखाएगा उसके पास उसको पहले लेने जाऊं ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण है और राधा और कृष्ण का युगल रूप है, तो वो तो सदा वृंदावन में ही है, लेकिन दुनिया के लिए वृंदावन गुप्त हो गया था, तो दुनिया को कौन वृंदावन दिखाएगा? उसको तो पहले लेके आओ। तो दुनिया को वृंदावन दिखाने वाले तो शिव गोस्वामी है, उन्होंने दुनिया के सामने वृंदावन को प्रकट किया है। तो उस पात्र को ढूंढने के लिए भगवान अपने भक्त को ढूंढने के लिए गए, वो वहां चले गए राम के लिए, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को दर्शन दिया और कहा कि थोड़े दिनों में भगवान श्री कृष्ण आपकी आपको अपनी सेवा में ले लेंगे। रूप गोस्वामी छोड़ के चले गए सनातन गोस्वामी को, पीछे राजा ने जेल में बंद कर दिया, वहां से निकले रास्ते में कष्ट भोगते प्यादल चलते हुए, जब रथ में चढ़ने वाला आज प्यादल चल के बंगाल से वृंदावन तक पैदल गए, तो वो अब जब चैतन्य महाप्रभु से मिले हैं बनारस में, तब सनातन गोस्वामी ने हाथ जोड़ के कहा कृपा करके, पहले तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरी भलाई किसमें है। तो दुनिया के लोग समझते हैं मैं बड़ा हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मेरा हित किसमें है, इसलिए आप कृपा करके मेरा हित क्या है ये मुझे बताइए। ये पहले बड़ी करुणा से ये प्रार्थना की और फिर पहले दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा अमी के मैं कौन हूं और दूसरा प्रश्न पूछा कि मैं संसार में दुख क्यों भोग रहा हूं। मैं कौन हूं, मैं संसार में दुख क्यों भोग रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं मंत्री हो, घर वाले मुझे कहते हैं मेरा पिता हो, मानो उनको भाई कहता है मेरा भाई हो, लेकिन मैं कौन हूं ये तो मेरे को पता नहीं है। लोग मुझे कह रहे हैं ये ऐसे ही है जैसे छोटा बच्चा घर में जन्म लेना, कोई कहता ये मेरा बेटा है, कोई कहता ये मेरा पोता है, कोई कहता नहीं 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 तुम्हारा पोता नहीं है ये मेरा भांजा है, लेकिन बच्चा कहता मैं किसी को नहीं जानता हूं। क्यों क्या बोल रहे, बच्चा जानता है क्या किसी को, जब जन्म लेता है जानता है क्या किसी को। हम पकड़े गए तुम मेरे ये हो तुम मेरे वो देखता रहता क्या कहते हो, मैं तो तुमको नहीं जानता हूं। लेकिन हम ऐसा कहते ऐसा कहते ऐसा कहते वो दो तीन साल तक बड़े होते होते वो मान ही लेता है कि ये सब कुछ पुरानी तीन ठगों की कहानी सुनी। आदमी ले जा रहा था गाय का बछड़ा, ठगों को लूटना था। पहले तीन थे, एक ने पहले कहा तुम कहना महाराज वो ब्राह्मण गाय ले जा रहा था ना, महाराज होकर आप कुत्ते में कौन ले जा रहे, मैं कुत्ता थोड़ी है गाय का बछड़ा नहीं है। बोला हमको तो कुत्ता दिख रहा है महाराज। आगे गया दूसरा आया बोला ब्राह्मण देवता गाय छोड़ के कुत्ते को पालन करना शुरू कर दिया। बोलता है उसने भी कुत्ता कहा ये भी कुत्ता कहा, फिर देख रहा है बछड़े को तो बछड़ा है, मैं तो घर से लाया था वही बछड़ा है। नहीं नहीं तुम ठीक नहीं करो। तीसरे ने कहा महाराज जय हो आपकी कुत्ता बहुत अच्छा है। अब इसने कहा ये तो कहीं ऐसे नहीं है कुत्ता ही मैं लेके जा रहा हूं, और उसने कुत्ता करके वहां छोड़ दिया और वो बछड़ा चुहा के नहीं चले गए। उनको तो ठग थे, उनको तो ठगना ही था। ऐसे अंग्रेज जब यहां आए तब हमको ऐसे कहा कि तुम्हारे सब देश की चीजें खराब है, हमारे देश की इस्तेमाल करो, स्वदेशी सब खराब है, विदेशी सब करो। हमारा दिमाग इतना खराब हो गया कि हर एक चीज बाहर की बनी हुई अच्छी है। तब प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा ठीक है तुम इतने बिगड़ गए हो, पराई चीज को अच्छी मानते हो, तो तेरे लिए साधु सन्यासी भी मैं बाहर से लाऊंगा, कभी तो सुधरेगा नहीं तो नहीं सुधरेगा। ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने यह निर्णय निकाला कि सब मेड इन अमेरिका इंडियन के आदि हो गए, मेड इन अमेरिका या मेड इन इंग्लैंड चाहिए, तो अब वैष्णव भी मेड इन अमेरिका इंग्लैंड बने, तभी ये लोग सुधरेंगे नहीं तो नहीं सुधरेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये जो है वो एक प्लान पूरा तैयार किया और प्रभुपाद ने उसको एग्जीक्यूट करके दिखाया। और वाकई प्रभुपाद कहते, किसी ने पूछा व्हाई यू स्टार्टेड योर मूवमेंट इन यूएसए, आपने यूएसए में क्यों शुरू किया, प्रभुपाद ने बिकॉज कस्टमर्स आर देयर, जहां ग्राहक होंगे वहां जाऊंगा। मैंने हिंदुस्तान में बहुत प्रयास किया, एक भी ग्राहक नहीं मिला। दूसरी जगह पूछा प्रभुपाद से व्हाई योर फॉलोअर्स आर यंग स्टूडेंट, आपके पास नौजवान सब क्यों आते हैं। प्रभुपाद क्या यूनिवर्सिटी में सब नौजवान करके क्यों पढ़ते, यूनिवर्सिटी में बूढ़े क्यों नहीं जाते, बड़े एजुकेशन बन रहा, वी आर ऑल्सो गिविंग एजुकेशन, इसलिए हमारे पास नौजवान है क्योंकि हम एजुकेशन देते, तो हमारी शिक्षा जो है वो एजुकेशन है, इसलिए हमारे पास जवान। प्रभुपाद सब ऐसा पक्का जवाब उत्तर देते, किसी ने कहा क्या जरूरत है महाराज इतने सारे मंदिर के लिए पथा करने की, बहुत सारे मंदिर पहले से बने हुए। तो उस आदमी के साथ बच्चा था, प्रभुपाद ने कहा ये कौन है, बोला ये मेरा बेटा है, बोला क्या जरूरत है पैदा करने की, बहुत भूल रहे हैं, बोले इसकी क्या जरूरत है, बहुत भूल रहे बच्चा बचाने। प्रभुपाद सब परफेक्ट, उत्तर देना इतना मजेदार होता था। और न्यूज रिपोर्टर आई और स्कर्ट पहना हुआ था स्कर्ट, और कह दिया महाराज आपका सर के बाल क्यों मुंडवाते हो, प्रभुपाद ने कहा तुम ये पांव अपने नंगे क्यों करके घूमती हो। पहले उसके ऊपर आकर लगे, फिर कहा इट इज बेटर टू कीप द हेड कूल एंड फुट वार्म, दिमाग ठंडा बाद में आएगा, पांव गरम पेट नरम दिमाग ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा, ये हेल्थ का फॉर्मूला है। तो दिमाग ठंडा होना चाहिए, तो एयर कंडीशन होना चाहिए। यह ऊपर घोंसला मत बनाओ, घोंसला बहुत लंबा घोंसला बनाने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण। तो बात कर रहे थे, सनातन गोस्वामी ने पूछा मैं कौन हूं। लोग मुझे कहते हैं मंत्री हो, लोग मुझे कहते हैं बड़े विद्वान हो, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं है मैं कौन हूं। और फिर मैं इतना दुख की दुनिया में देख रहा हूं। और फिर पूछा कि साध्य क्या है, साधन क्या है, आखिर जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। ये चार प्रश्न चेतना महाप्रभु से सनातन गोस्वामी में हम सब के लिए, हम सब की ओर से पूछे हैं। तो हम आप ये समझो मैं कौन हूं, मैं दुनिया में दुख क्यों भोग रहा हूं, मेरा साधन क्या है और मैं उसको कैसे प्राप्त करूं। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए चेतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। तुम कौन हो तुमने पूछा ना, तो आत्मा के नाते तुम श्री कृष्ण का नित्य दास हो, ये तेरा स्वरूप है। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। शरीर और आत्मा दो चीजें हैं, तो शरीर का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, वो हमेशा नित्य सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण का दास है। तो क्यों नहीं भगवान का दास है तो उसकी नौकरी करता है। तब दूसरी लाइन में कहते हैं तटस्थ शक्ति, वो बीच में खड़ा है, वो किनारे के ऊपर खड़ा है, है मेरा दास, लेकिन वो खड़ा है किनारे के ऊपर। एक तरफ बाहर अंग शक्ति है संसार की माया, और दूसरे तरफ मेरे पास ले आने वाली मेरी अंतरंग शक्ति है, ये बीच में खड़ा है। इसको मेरे पास आने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप ये नीचे तो गिरा हुआ है ही, उसको प्रयास नहीं करेगा, नीचे गिरने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऊपर उठने का प्रयास करना पड़ेगा। नदी जहां बह रही है तो कचरा भी उसमें बह जाएगा, नीचे की तरफ बहने में कोई प्रयास नहीं है, उल्टा जाना मुश्किल है। तो यहां तो उल्टा जाना है भगवान की ओर। कहां जाना है, जहां मूल है पेड़ की, ऊर्ध्व मूल अध शाखम अश्वथम प्राहु अव्ययम्। ये अविनाशी वृक्ष की तरह ये संसार है, इसकी जड़ ऊपर है, लेकिन हम सब फल खाने वाले हैं, और ये जड़, ये ऐसा पेड़ उल्टा है कि जड़ नीचे फल नीचे है, हम उधर ही खुश हैं कि फल खा रहे हैं, जड़ तक कोई नहीं पहुंच रहा, फल खाने में लगे हुए हैं, जड़ ऊपर है। ऊपर जाना में मेहनत होती है, ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। कितने लोग नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ के और नारियल उतार सकते हैं आप में से, हा? सब पी सकते हैं नारियल का पानी, लेकिन उतारने वाला कितना है, हा? बहुत मुश्किल है ना, पीना जितना आसान है उतना उतारना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा लगा लो। तो माया के अनुग्रह में गिरना ऐसी है जैसे नारियल को पीना, लेकिन भगवान की शक्ति के क्षण में जाना है, मतलब नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ना है, तभी हाथ आएगा। इट्स नॉट सो सिंपल। तो जीव तटस्थ शक्ति है, ये दो बातें महाप्रभु ने कह दी। फिर उदाहरण दे दिया, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, और जैसे आग और आग की चिंगारी, ऐसे ये जीव हमारी पहचान क्या है। ये शब्द लिखा है महाप्रभु ने यहां, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति, भेदा भेद प्रकाश, सूर्य अंश किरण, यही अग्नि ज्वाला चाय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। ये सिद्धांत बताकर फिर कुछ श्लोक और भगवद गीता भागवत से जीव के विषय में कहकर आगे कहते हैं, ये आप लोगों को मालूम, जिनको नहीं है उनको सिर्फ बताने के लिए, कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, लेकिन शास्त्रों में तीन शक्तियों का तीन कैटेगरीज उनकी बनाई गई है। एक शक्ति भगवान की, भगवान के आध्यात्मिक जगत के देखभाल करती है। शक्ति को आप ऐसे समझ लो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो होती है उसको शक्ति कहते हैं ना, वो गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट जो भगवान के धाम का देखभाल करती है, एक शक्ति जो इस भौतिक जगत का देखभाल करती है, और तीसरी बीच की शक्ति है जो जो किसी बोध में गिरेगी वही उसका देखभाल करेगी। तो अंतरंग शक्ति भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड का देखभाल करती है, उसको अंतरंग शक्ति कहते हैं, इंटरनल पोटेंसी। उसका स्वरूप है राधा रानी अहलादिनी शक्ति। और बाह्य अंग इस भौतिक जगत का देखभाल करती है भगवान की, बाह्य अंग शक्ति उसका स्वरूप है दुर्गा। दुर्गा का मतलब है, दुर्ग का मतलब है किला। कल हम गए चित्रदुर्ग, तो दुर्ग का मतलब किला, पुराने जमाने में होते थे ना फोर्ट। तो ये भौतिक जगत एक किला है, और उस किले के ऊपर जो उस किले को चलाने वाला सारा उसका संचालन चलाती है वो दुर्गा है। तो बाह्यांग शक्ति भौतिक जगत का संचालन चलाती है, अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक जगत का संचालन चलाती है। हम जीव जो है, जीव आत्मा, ये भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ का मतलब बीच में खड़े हैं। अब हमारे को च्वाइस करना है कि हम भगवान की अंतरंग शक्ति के शरण में जाकर भगवान के धाम जाएं, कि भगवान की बाह्यांग शक्ति के शरण में जाकर इस जगत के अंदर पड़े रहे। ये च्वाइस हमारी है। जैसे आपका ये च्वाइस है कि शाम को चल के मंदिर में आओ और कथा सुनो, ये एक इंसान की च्वाइस है कि या तो जाए शाम को भगवान की कथा सुने, या जाए किसी बार के अंदर बैठ के शराब पिए। इसकी आजादी इंसान को है कि नहीं? यहां आएगा तो अमृत पिएगा, और वहां जाएगा तो क्या कहते हैं उसको, सड़ा हुआ। शराब का मतलब सड़ा हुआ पानी, सड़े शराब का मतलब सड़ा, वैसे ही कहते हैं सड़ गया है जो, समझते सड़ा किसको बोलते हैं, राटन। नाम है शराब जो करे जीवन खराब। तो च्वाइस तो आदमी की है ना, कहां जाए। तो ऐसे हमारी च्वाइस है कि हम किसकी गोद में जाना चाहते हैं। बाह्यांग शक्ति की गोद में जाएंगे तो दूसरा जो प्रश्न है कि हम दुनिया में दुख क्यों भोग रहे हैं, उसका उत्तर ये है। दूसरे का उत्तर क्या है, प्रश्न दूसरा क्या है कि हम दुनिया में दुख क्यों भोग रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु उसका उत्तर देते हैं। उत्तर सुन लो, कृष्ण भूमि से जीव अनादि बाहर मुख, अतव माया तार दे संसार दुख। जब हम ये निर्णय कर लेते हैं कि हमको भगवान की शक्ति के शरण में नहीं जाता, जाना है अंतरंग के, उधर नहीं जाना है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप वह माया शक्ति पकड़ के और अच्छी तरह से हमारा धुलाई शुरू कर दे, कुछ करने की जरूरत नहीं। कृष्ण भूले, जब कृष्ण को भूले तो माया ने आपको पकड़ लिया। केवल इतना ही करने से दुनिया का दुख होता है। तो माया क्या करेगी, कोई पूछे तो जवाब देते हैं माया क्या करेगी। सुनिए माया क्या करेगी, माया क्या करेगी, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए। माया क्या कराएगी, कभी तो बहुत बड़ा भोग कराएगी, घुमाएगी, और कभी नीचे डंडा या जय राजा ये नजीते चुबाए। कैसे करेगी, कभी ऊपर घुमाएगी कभी नीचे घुमाएगी। माया कहां ले जाएगी, जहां तक उसका राज्य है, उसका राज्य इस भौतिक जगत में है, और इसका भौतिक जगत स्वर्ग से लेकर पाताल तक सारा भौतिक जगत है। तो कभी ऊपर ले जाएगी कभी नीचे ले जाएगी, लेकिन ऊपर जाने से थोड़ा सुख मिलता है, नीचे जाने में थोड़ा दुख मिलता है। लेकिन ये सुख दुख कैसा है, उदाहरण क्या देते हैं, पहले कोई चोरी करता था तो राजा उसको क्या करता था, नदी के अंदर उसके गर्दन से पकड़ के डुबाता था और एक मिनट अंदर खड़ा ले करता था, फिर जब बाहर निकालता था, हाँ बहुत अच्छा है, खुश हो गया, वो खुश हो जाता था, बाहर सांस ले और फिर दोबारा नीचे डुबाता था, फिर वापस बाहर निकल, बहुत अच्छा है। तो अच्छा क्या है, थोड़ी देर के बाद दोबारा डुबाएगा, सिर्फ सांस लेने के लिए सर बाहर निकाला और खुश हो गया। तो माया ऐसे कभी ऊपर उठाएगी और कभी नीचे धक्का देगी, ये ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। इसी के ऊपर हमने उदाहरण पहले दिया था आपको, कभी कलकत्ता में हम बैठे थे, कहां प्रोग्राम रखा उन्होंने बच्चों के पार्क में, तो बच्चों के पार्क के अंदर क्या है देखा हमने, एक देखा ऊपर सीढ़ी से चढ़ जाओ फिर फिसल के नीचे आओ, फिर दूसरा देखा इस झूले में इधर जाओ फिर इधर जाओ, फिर एक ऐसे घूमू। तो मैंने बोला ये जो कुछ सब यहां हो रहा है ये किसके लिए, बोला बच्चों के लिए, भाई ऊपर जाओ फिर नीचे खिसक के आओ, फिर वापस ऊपर जाओ फिर खिसक के आओ। मैंने बोला बड़े क्यों नहीं करते, बोला ये बच्चों का खेल है, बच्चों का ही खेल है ना। तो ऐसे ही जो इस दुनिया में बाहरंग शक्ति के पास आ जाता है वो बच्चों की तरह ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, तो इसलिए घूमता रहेगा, वो तो कभी भी बड़ा आदमी नहीं करेगा बच्चों वाला खेल। तो इसलिए आप बच्चे हो के बड़े हो ये फैसला करो। आज हम गए थे दादा अमर के वहां सत्संग करने, तो वहां टाफी रखी हुई थी प्रसाद देने के लिए। मैंने बोला संत पहले टाफी प्रसाद देने के लिए क्यों रखते थे, ये आपको दिखाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से आप बच्चे हो भले 50 साल के हो, टाफी तो बच्चों के दौर में कुछ की जाता है ना, तो आप हो सकता है 60 साल के हो लेकिन साधु की दृष्टि में बच्चे हो, अभी अभी आपने आध्यात्मिक जगत का ABC भी शुरू नहीं किया। तो इसलिए या टाफी देते थे या कुकी, पेपर जी कुकी देते थे, सब लोग आते थे, कुकी का मतलब बिस्कुट देना, ये भी बच्चों के लिए होता है, ये सिर्फ दिखाना होता है कि तुम बच्चे हो अभी तक, इसके पीछे रहस्य है कि ये मत समझो कि तुम बहुत बड़े हो गए, बच्चे का ये प्रसाद है। आध्यात्मिक जगत में चाहे हम उम्र से कितने भी बड़े हो लेकिन ऑलवेज स्टूडेंट। एक भक्त ने एक प्रश्न ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद से, प्रभुपाद ऐसे बैठे हुए प्रवचन दे रहे हैं कि ऐसे भी ईगल हैं, ईगल क्या क्या कहते हैं, चील ऐसे भी हैं जो एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं और आकाश में ही अंडे देते हैं, उसके अंडे स्पेस में फूटते हैं। तो एक ने कहा प्रभुपाद इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, प्रभुपाद यू आर स्टिल इन दी वर्ल्ड, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दी वर्ल्ड, अभी तक तुम मां के गर्भ में, तुम्हें क्या पता दुनिया कैसे चलती है। प्रभुपाद आंसर इज लाइक दैट, स्पिरिचुअली यू आर ए चाइल्ड, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दी वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है ये तुम कैसे जान सकते हो, आध्यात्मिक दृष्टि से तो तुम बच्चे हो। अभी मैं आपको अनुभव करना है तो कोई भी आदमी बाहर से पकड़ के लाओ 50 साल का, उसको मैं माला देता हूं हाथ में, वो माला ठीक नहीं जप सकेगा, वो ऐसे पकड़ेगा ऐसे करेगा हरे कृष्णा पूरा एक मंत्र नहीं जप पाएगा, तो उसको सिखाओगे तो बच्चा ही हो गया कि नहीं हो गया। अब दिन हमने देखा है आंखों से, तो जब बच्चा ही हो गया ना, तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम बच्चे ही हैं, इसलिए दुनिया के बच्चे वाले खेल में बहुत खुश होते हैं, ऊपर जाना नीचे आना, किसको किसको किसके लिए खींच रहे, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, लेकिन बच्चे ही वहां खेलते हैं, बड़ा कोई नहीं खेलता है। कभी देखा है बड़े को वहां खेलते हुए, क्यों नहीं जाता है, बड़ा जाता है तो बच्चों को बोला जल्दी करो जल्दी करो, चलो टाइम हो गया, ये कहेगा ना। तो ऐसे हमारा ये काम है आपको कहना बहुत हो गया बेटा खेलना, अभी ऊपर नीचे बहुत हो गया, चलो वापस। असल में ये इसको ऐसे समझना चाहिए, हम बहुत ड्रामा करते दुनिया में, हम उसी खेल में खेलना चाहते हैं, वही कम कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बस इधर घूमते रहेंगे, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। किसी बच्चे को कोई माता पिता वहां चिल्ड्रन पार्क में छोड़ने नहीं जाएगा, संडे वंडे एक दिन लेके जाता है, और यहाँ आप मुश्किल से ये जो ह्यूमन पार्क है इसमें डंडे को आते हो। तो चिल्ड्रन पार्क में तो सदा के लिए नहीं रह सकते, ये बात समझ में आने की है। तो ऐसे ही चेतन महाप्रभु यहां बता रहे हैं कि ये माया भगवान की है, भगवान की माया है, और जो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को भूलेंगे तो माया ये पकड़ लेगी, पकड़ लेगी, और इससे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। इससे छुड़ाना पता है क्यों मुश्किल है। अब वो आप दुर्गा के मंदिर में जाने वाले सब लोगों से पूछना क्यों जा रहे हैं? वो क्या कहेंगे, हे माँ, हे जगदम्बे, कृपा करना मेरा दुकान गंदा अच्छा चले, ठीक है, मेरे को मेरे बेटे का शादी हो जाए, ठीक है, यही मांगेगा ना जाके। इसका अर्थ क्या हुआ, एक आदमी जेल के अंदर बंद हो और सुपरिटेंडेंट को कहे कि मेरे को जेल में एसी लगा के दो, मेरे को जेल के अंदर टेलीविजन दे दो, तो ये को बुद्धिमान उसको कहेंगे आप? हाँ, उसको जाके ये कहे, हे मां दुर्गा, आप इस भौतिक जगत की मालिक हो, मेरे को यहां से छोड़ दो कि मैं जाऊं भगवान के चरण में, तो ये बुद्धिमान है कि जो जाके ये मांगता है कि टेलीविजन मेरे को दे दो, मेरे को एसी लगा दो, जेल में, दोनों से कौन सा अच्छा है? हाँ, तो लोग काय के लिए जाते हैं, टेलीविजन लेने जाते हैं ना, एसी लगाने जाते हैं ना, इसलिए बहुत मुश्किल है जान छुड़ाना। कोई भी लागू ये नहीं कहता है, और गोपियों ने इसलिए भागवत में ये सिखाया है कि देवी के पास जाओ तो भी कहो कृष्ण हमको पति के रूप में मिले। गोपियां महीना पूरा कात्यायनी देवी का व्रत कर रहे, कह रही थी कि हे माँ कात्यायनी, आप कृपा करो, क्योंकि आपकी सेवा करने से पति मिलता है, हमको तो कृष्ण पति चाहिए। अब ये हुआ जेल से निकलने का साधन। उसी जगह से कुछ जेल में सुख लेना चाहते हैं, कुछ जेल से निकलना चाहते हैं, तो किसको निकलना चाहिए? बुद्धिमान वो है जो हम यहां तो आ तो गए हैं, अभी माया का तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम उसकी ज्यूरिडिक्शन में रह रहे हैं, उसकी एरिया में रह रहे हैं। वैसे शास्त्र हमारे कहते हैं भक्त, भगवान और भक्ति अंतरंग शक्ति के शरण में होता है। भक्त, भगवान और भक्ति, ऑल दीज थ्री दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, भगवान की अध्याय, और ऐसे लिखा है चैतन्य चरितमृत, आह्लादिनी शक्ति करेर भक्तेर पोषण। पोषण का मतलब देखभाल करना, खिलाना पिलाना। आह्लादिनी शक्ति राधा रानी कृष्ण को आनंद देती है और भक्तों का पोषण करती है। तो भक्त वैसे बाहरंग शक्ति के शरण में नहीं है, लेकिन कौन से भक्त? महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। जो महात्मा होते हैं वो भगवान की दैवी प्रकृति, मतलब अंतरंग प्रकृति, भगवान की इस दुनिया में रहते हुए भी उनका देखभाल भगवान की अंतरंग प्रकृति करती है। कैसे महात्मा होते हैं वो? महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता भजते अनन्य मनसो। कौन महात्मा किसको कहेंगे? अनन्य। अनन्य का अर्थ क्या है? न अन्य और किसी का नहीं, स्वरूप कृष्ण का। न अन्य और किसी का नहीं, अनन्य मन सो, मन से केवल एक कृष्ण का भजन करता है। कैसे भजन करता है? कब करता है? संडे को करता है कि मंडे को करता है? तब कहते सततम कीर्तन यंतो माम। कृष्ण कहते मेरी अंतरंग शक्ति किसका, किसको अपने शरण में रखती है, किसका रक्षण करती है, संरक्षण करती है? जो निरंतर मेरा कीर्तन करता है। सततम कीर्तन यंतो माम। बोला कीर्तन करते है सिर्फ बैठे? बोला नहीं, यतंतश्च दृढ़वृता। दृढ़ भक्त धारण करते हैं, यतन करते हैं कि कहीं वापस हम गिर न जाए। भक्ति तो शुरू की है लेकिन कभी भी गलती हो सकती है, इसलिए यतन का मतलब क्या होता है? यतन का मतलब होता है मोस्ट केयरफुल, बहुत सावधान होते हैं, यतनशील होते हैं, दृढ़ व्रत धारण करते हैं। एकादशी का व्रत करेंगे, दृढ़ व्रत हो गया, रोज सुबह उठेंगे भगवान का नाम जपने के लिए, दृढ़ व्रत है, उनने व्रत धारण किया हुआ है। नमस्ते माम भक्त्या, तो मुझे नमस्कार करते हैं। कहां? घर में बैठे हुए बिस्तर में सोए हुए भगवान तुम्हारा नमस्कार कर रहे? नहीं, मंदिर में आके मुझे नमस्कार करके जाते, नहीं तो मुझे घर में बिठाते उसको नमस्कार करते, नहीं तो भगवान को नमस्कार कैसे करोगे? भगवान के सामने जाकर करोगे नहीं छोड़ते, भगवान से आपको दंडवत प्रणाम है घर में बैठे हुए। नमस्कार करने का अर्थ है, पहले तो अर्थ ये है नमः, मैं कुछ नहीं हूं, मैं आपका हूं, मैं आपके चरणों में अपने आप को फेंक देता हूं। लेकिन नमस्कार तब करेंगे जब सामने कोई होगा तब ना, भाई ऐसे घर रस्ते में जाते हुए आप कहते नमस्कार नमस्कार ऐसे करते तो नहीं आते हो ना, किसी को देखते हो तब करते हो ना, तो भगवान को सामने देखेंगे तब नमस्कार करते ना। नमस्यं तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य प्रतिदिन उपासते का अर्थ है उप मतलब ऊपर उठ के, आसते का मतलब आसन लगाते, मेरे पास आके रोज बैठते हैं। जो मेरे पास बैठते हैं तो मेरे सामने हो गए, मेरे सामने हो गए तो मैं उनको याद आऊंगा, मैं उनको याद आऊंगा तो माया उनको हाथ नहीं लगाएगी, मेरे को भूल जाएंगे तो अपने आप माया उनको पकड़ लेगी, और पकड़ के माया ऐसा खुश करके ऊपर घुमाएगी फिर एकदम नीचे गिराएगी, फिर ऊपर ले जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। ऐसे ही दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं, बहुत से नहीं ऑलमोस्ट सारे लोग जो हैं वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। ये सच है कि झूठ है? दुनिया के सबसे बड़े दो मजहब उनका गोल स्वर्ग तक ही है। हाँ, एक हेवन में जाना चाहते हैं, एक जन्नत में जाना चाहते हैं। और हमारे भी वैदिक धर्म के मानने वाले मरने के बाद सब स्वर्गवासी लिखते हैं, तो सबका ही स्वर्ग तक का ही लक्षण है ना। और इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने कह दिया चेतन भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम वसंती। स्वर्ग में जाने के बाद भी जैसे उनके पुण्य खत्म हुए तो वापस धरती के ऊपर गिरेंगे, जितना पुण्य करोगे उतना भोग करोगे। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, भारत वाले लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, यही ना, ये ना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। और भागवत में पांचवें स्कंद में लिखा है कि सूतल लोक तलातल लोक जो इस धरती से नीचे हैं उनको कहते हैं बिल्व स्वर्ग। बिल किसको कहते हैं? जैसे सांप जाता है उसको चूहा जाता है उसको बिल कहते हैं, तो ये धरती के नीचे है इसलिए उनको बिल कहते हैं। वो बिल वाला स्वर्ग है, उसमें भोग इंद्र के स्वर्ग से ज्यादा है। और उधर रहते कौन है? तब भागवत लिखी है वहां डीमंस रहते हैं, दानू के बेटे दानव रहते हैं और कद्रू के बेटे सांप रहते हैं, वो सब लोग वहां रहते हैं और उनको किसी का डर नहीं है, बूढ़े नहीं होते हैं, बीमार नहीं होते हैं। लेकिन वहां का लिविंग स्टैंडर्ड, प्रभुपाद ने पता एक ट्रांसलेशन के साथ लिखा द लिविंग स्टैंडर्ड इज वेरी हाई देयर एंड वेयर एवर देयर इज ए लिविंग स्टैंडर्ड हाई पीपल आर ऑलमोस्ट डिमोनिक। क्योंकि वहां केवल असुर लोग रहते हैं। तो हमारा अगर उद्देश्य है कि लिविंग स्टैंडर्ड हाई रहा, इसका मतलब हम थोड़े से अच्छे असुर बनने की हमारी बहुत तीव्र इच्छा है। असुर का मतलब है एक सुर, सुर कहते हैं देवताओं को, और असुर कहते हैं जो जो क्या है, जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो सुर, जो भगवान के सुर में नहीं सुर मिलाए वो असुर। सुर में सुर मिलाए मतलब आज्ञा का पालन करे वो असुर हो गया, नहीं आज्ञा का पालन करे वो असुर हो गया। और असुर आपको मिलेंगे सब देवी की बहुत बड़ी भक्ति करते हैं, शंकर जी के भी बहुत बड़े भक्त मिलेंगे लेकिन भगवान से द्वेष करते हैं। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है, प्रायरी आपको असुर कहां मिलेंगे, ऐसे मंदिरों के अंदर क्या करते हुए, सामने वाले का दुकान जले मेरा दुकान चले। इसी को असुर कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा चले दूसरे का जले। तो ये असुर इसको कहते और किसको कहते, ये काली ये जो ये ऐसे काला 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 क्या कहते हैं इसको, ये करते तंत्र मंत्र जंतर वाले यही तो काम करते और क्या करते। तो ये तो डिमानिक काम हो कि नहीं हुआ? तो इस दुनिया के लोग क्यों बाहर के देश में जाना चाहते हैं, वहां सुख ज्यादा है। ऐसे हम कभी स्वर्ग जाना चाहते हैं मरने के बाद क्योंकि वहां सुख ज्यादा है, लेकिन कब तक वहां रहोगे? जब तक पुण्य आपने किए हैं उसका फल फिर नीचे गिरना। इसका मतलब स्वर्ग हमारा उद्देश्य नहीं है, स्वर्ग भी माया के अंतर्गत आता है, माया स्वर्ग तक ले जाती है, उसका वहां ज्यूरिडिक्शन उसका है, वहां से वापस नीचे आना पड़ेगा। वो फर्स्ट क्लास का कैदी हो गया, उसके पास सब सुविधा है, लेकिन जेल से बाहर नहीं जा सकता, वापस उधर ही रहना पड़ेगा। तो ये माया हमको संसार से जाने नहीं देगी, इसलिए ये भगवद गीता का श्लोक याद करने जैसा है, देवी ऐश गुण मई मम माया दुर्तया, मेरी माया से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। फिर क्या करना चाहिए, कैसे पीछा छोड़ेगी, ये माम प्रपद्यन्ते तांस तथा क्या, ये माम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मेरा शरण ले लेता है वो माया उसको हाथ भी नहीं लगाएगी, बोले जाओ अब तुम्हारे ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो केवल माया ऊपर नीचे हमको नहीं घुमाए, अथवा बच्चों के स्तर तक नहीं रखे, बड़ा होने दे, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, भगवान का परपन, पता है किसको कहते हैं, ये माम प्रपद्यन्ते, परपन कहते हैं भगवान के पांव को पकड़ लेना। कहां से पकड़ना, जहां पायल डालते हैं उस जगह से पकड़ने को बोलते हैं परपना। ये शरणागति का अभी अभी फर्स्ट लक्षण है, आये शरणागति इससे ऊपर है, लेकिन कम से कम परपना भी हुआ तो माया से बच जाएगा कि भगवान के चरण पकड़ ले। भगवान के चरण कैसे पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे भगवान के चरण, हरे कृष्ण बोल, पर कैसे पकड़ेंगे भगवान के चरण, फिर भी भगवान का सेवा करना, कैसे सेवा करेंगे, श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान का चरण पकड़ लेंगे,
पांव के ऊपर खड़ा होना,
अपने पांव के ऊपर खड़ा होना, भगवान के पांव के ऊपर खड़ा हो जाएंगे। भगवान के चरण कैसे पकड़ेंगे, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, रहस्य है। कौन बैठती है भगवान के चरणों के ऊपर हमेशा के लिए, लक्ष्मी माता जी, नजदीक भी नहीं आने देगी, बोली मैं तेरे घर नहीं आऊंगी, तुम जाओगे ही नहीं चरण के पास, लक्ष्मी ने कह दिया कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तो भले तुम जानो तुम्हारा नारायण जा रहे, तुम ही हमारे घर आना, मां नारायण को रहने दो। क्यों नहीं भगवान के चरणों को हम नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी ने पहले पकड़े रखे हैं, और हम लक्ष्मी चाहते हैं, भगवान के चरण चाहते ही नहीं है, हमको चरण दिखते ही नहीं है, हमें चरणों के पास केवल लक्ष्मी ही दिखती है, उसी को हम पकड़ते हैं। हम क्यों नहीं भगवान के चरण पकड़ते हैं, बैठिए वो तो लक्ष्मी बैठिए मां, हम क्यों नहीं भगवान के चरण पकड़ते हैं, क्योंकि हमने बहुत जन्मों से केवल लक्ष्मी की लालसा इतनी की है, चरणों के पास जाते हैं तो लक्ष्मी दिखाई देते, चरण भूल जाते, लक्ष्मी को पकड़ लेते, इसलिए बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए वही भगवान के चरण पकड़ सकता है जो नारद की तरह, जिसका न कोई घर है न कोई परिवार है, जिसको लक्ष्मी की कोई परवाह नहीं है, वो जाके मां को बोले जरा हटो, तुम मेरे चरण को हाथ लगा दे दो, वो कहीं तेरे पास नहीं आऊंगी, बड़ा सुखी हो गई, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। इसका मतलब जो अकिंचन होगा, जो संसार के भोग ऐश्वर्य से ऊपर उठेगा, भोगेश्वर पर सत्ता नाम तया पार्थ चेत सम, उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है, हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है, भगवान के चरणों के पास पहुंचते हैं, लक्ष्मी देखने से मन करता है, अभी सोने तो विष्णु अभी आंख नहीं खोली, मेरे को देखा थोड़ी है, मैंने तो लक्ष्मी को देख लिया है ना, इसी को ले लेते। और इसीलिए भगवान को मूर्खों को बहुत आते हुए देखे, भगवान आंखें बंद करके सोए हुए, बहुत आंखें बंद खोलते नहीं, बस किसको देखूं, मुझे कोई लेने आया हो तो देखूं। इसलिए जब दुर्योधन गया था भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता लेने द्वारका में, भगवान आंखें बंद करके सोए थे, बोला ये मूर्ख मुझे नहीं लेने आया, मेरी सेना लेने आया है, तो इसको क्यों देखूंगा। जैसे अर्जुन आके बैठा, चारपाई भगवान ने आंख खोली, बोला ये मेरे को लेने आया है। तो भगवान सिर्फ तब आंख खोलते हैं जब कोई भगवान के चरण के पास आके बैठ के उसको पकड़ता है, तो समझते ये मुझे लेने आया है, नहीं तो समझते जो ये मुझे नहीं लेने आया, ये मुझसे कुछ लेने आया है, तो आंख काहे के लिए खोले, जो चाहे वो ले जाओ, जान छोड़ो। भगवान का न चरण पकड़ने का सिर्फ एक ही भोगेश्वर्य पर सत्ता नाम, इन दो चीजों में फंस जाते हैं तो भगवान के चरण तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। भगवान का चरण तो उनका ही शरण है जिन्होंने इन सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाने का संकल्प कर लिया। इन चीजों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए तैयार नहीं है जो, उनको भगवान के चरण भगवान पाद सेवनम उन्हीं को भगवान देते हैं। चरणों का भगवान का अधिकार उसी को मिलता है जिनको भगवान की वस्तुओं के भोग करने की इच्छा नहीं है, भगवान की सेवा में लगाने की इच्छा है। हम सारे भगवान की वस्तुओं को भोगना चाहते हैं, ये हमारी समस्या है। और भगवान से अलग होकर भोगना चाहते हैं, ये बड़े से बड़ी समस्या है। भगवान के लिए राजभोग बना के भगवान का प्रसाद खाएं तो परेशानी नहीं है, लेकिन हमको वो बनाना है जो भगवान को भोग नहीं लगे क्योंकि हमको ही खाना है, ये हमारी समस्या है। और भगवान को वो भोग लगाना चाहिए जो भगवान चाहते हैं, न कि जो हम चाहते हैं वो भगवान को दिखा के हम खाएं। आज मेरा मन कर रहा है पिज्जा खाना है, बनाओ भगवान को दिखा देंगे, भगवान को दिखा देंगे, भगवान ने क्या मांगा है वो बनाओ ना। अब मैं आपके घर आऊं कहूं कि मुझे पानी पिलाओ, बोले नहीं प्रभु जी पानी तो हम नहीं दे सकते, एक गिलास पूरा 250-300 रुपये किलो वाला घी देते हैं पी लीजिए। अरे भाई नहीं, मुझे घी पिला के मरवाना है क्या? बोला आप मरो या जियो, लेकिन हम सिर्फ घी देंगे, पानी हम तो किसी को देते ही नहीं। अब इधर आप जैसे बड़े महात्मा आए उनको पानी पिलाए, पानी तो सबको पिलाते हैं, आपको तो घी ही पीना पड़ेगा। नहीं भाई मुझे ठीक है, मैं डायबिटीज है मुझे तो करेले की सब्जी, महाराज करेले में आपको तो हलवा ही खाना पड़ेगा। हमारे घर में हलवा नहीं खाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मर जाऊंगा फिर क्या हुआ, हमारा तो स्वाद हमारे को तो मिलेगा ना, फल मिलेगा ना, हमको तो फल मिलेगा ना। अब ये सोच समझ रहे कि हमारी सोच कैसे कि दूसरे को नुकसान होना हो मेरे को फायदा मिलना चाहिए। तो ये माया की गोद में आदमी कब गिरता है, जब कृष्ण को भूलता है, और उसको माया ऊपर नीचे ऐसे घुमाती रहती है। और फिर आगे क्या होता है, आगे बोलता है फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस माया की गोद से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तीन साधन, साधु शास्त्र कृपया, इसलिए भगवान ने कृपा करके साधु को और शास्त्र को इस दुनिया में भेजा है, शास्त्र भेजा है और साधु समझाने के लिए साथ में भेजा है। पहले नाम लिखा है साधु, फिर लिखा है शास्त्र। पहले चैतन्य महाप्रभु के मुख से नाम लिखा निकला साधु, कि शास्त्र होएगा भी तो समझाएगा कौन, साधु होगा तब समझाएगा ना। तो साधु शास्त्र कृपया, कृपाए, इन दोनों की अगर कृपा हो जाए, यदि कृष्ण मुख उन्मुख होए से ही जीव निस्तरे माया तार छाड़िया। अगर कोई साधु के संग में आए और शास्त्र को अगर जाने तो वो माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा और कृष्ण उन्मुख हो जाएगा। इसका मतलब कृष्ण के चरणों तक हमको कौन ले जा सकता है, साधु। कौन सा साधु, जो शास्त्र के आधार के ऊपर बोलता है, अपने मन से नहीं बोलता। इसलिए दो शब्द साधु और शास्त्र दोनों लिख दिए, साधु शास्त्र कृपया, दोनों कृपा करें। इसका मतलब ये शास्त्र कृपा करेगा तभी समझ में आएगा, पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। ये किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे को ये तो सारी चैतन्य चरित पढ़ जाएगा, मुझसे अच्छी तरह से इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेगा, लेकिन एक शब्द भी नहीं समझेगा। सच है कि नहीं, कुछ समझेगा इसका अर्थ नहीं समझेगा ना। इसका मतलब कृपा जब करेगा शास्त्र तभी शास्त्र समझ में आएगा। ये शास्त्र भी ऐसे है जैसे साक्षात भगवान, वो कृपा कब करेंगे, जब देखेंगे हमारा हृदय शुद्ध है और हम भगवान को चाहते हैं। नहीं तो ये शास्त्र पढ़ने से, पन्ने पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, ये किताब जिस प्रेस वाले ने छपा है, एक नहीं लाखों किताब छपे हैं, लेकिन एक पैसे का भी फायदा नहीं लिया उसने। और इसकी कंपोजिंग जिसने किया, उसने एक एक शब्द को अच्छी तरह से कंपोज किया है, लेकिन एक भी अर्थ उसको समझ में नहीं आया। ये सच है कि नहीं, मूर्ति बनाने वालों ने इतनी मूर्तियां बनाई है, लेकिन एक ने भी भगवान की पूजा नहीं की। तो ये कृपा जब करते हैं साधु और शास्त्र जब कृपा करते हैं, तब जीव कृष्ण उन्मुख होता है। कृष्ण उन्मुख मतलब उसका मुंह कृष्ण की तरफ मुड़ता है और कृष्ण का दर्शन करने का संभावना है, उसके चरण पकड़ने का कुछ चांसेस होते हैं। ये जब दो कृपा करेंगे तभी माया से छूट सकेंगे। फिर आगे महाप्रभु कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। ये एक रूल बता दिया कि माया के नशे में जो जीव है ना, अपने आप कभी भगवान का भक्त नहीं बन सकता। कोई कहे कि मैं अपने आप अभी छोड़ बाद में, यार प्रभु जी आप साधु जानो, आपका शास्त्र जाने, हम रिटायर होंगे, अपने आप किताब पढ़ लेंगे, मेरे दादा का पढ़ा है, इज नॉट पॉसिबल। माया मुग्ध जीव है, मुग्ध कहते किसको कहते हैं, मुग्ध का मतलब नशे में, जो माया के नशे में व्यक्ति है वो अपने आप कभी भी कृष्ण की ओर नहीं जा सकता है, ये संभव नहीं है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वत, स्वत मतलब अपने आप, स्वयं कृष्ण ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान अपने आप नहीं हो सकता। जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान श्री कृष्ण ने वेद और पुराण इस दुनिया में दिया है। कैसे दिया है कृष्ण ने, कृष्ण वेद व्यास बनकर आए और वेद व्यास बनकर उसने वेद और पुराण हमको दी। सो कृष्ण ने कृपा करके वेद व्यास का अवतार लेकर आए स्वयं ने और हमको वेद और पुराण दिए, और वेद और पुराण दिए, इससे किससे भी हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आगे और बोलेंगे। इसके लिए आगे बोलते अब तीन शब्द बोलने, शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे ज्ञान 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 जानन, ये तीन चीजें हैं, शास्त्र गुरु आत्मा रूपे, इन तीन रूपों में, शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में और आत्मा के रूप में। आप नारे जानान कृष्ण मोर प्रभु त्रात जीवेर है ज्ञान, ये तीन हमको क्या सिखाते हैं, कृष्ण मोर प्रभु। कृष्ण मोर प्रभु का मतलब क्या हुआ, मैं कृष्ण का दास, भाई कृष्ण मेरे प्रभु है तो मैं क्या हुआ, कृष्ण का दास हुआ। तो यहां महाप्रभु ऐसे कहते हैं कि लोग दास कहने में उनको डर लगता है, इसलिए कम से कम कहेंगे कृष्ण मेरा प्रभु है तो भी काम चल जाएगा। इस दुनिया में दास अपने आप को कहना बहुत शर्म आती है लोगों को, तो कृष्ण हमारे प्रभु है तो अपने आप समझ में आएगा कि हम कृष्ण के दास हैं। तो ये एक और कहने की शैली है कि अगर ये तीन कृपा करें, इन तीनों के लिए चलिए, फॉरगेटफुल कंडीशन सोल इज एजुकेटेड बाय कृष्ण थ्रू वैदिक लिटरेचर थ्रू द रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर गुरु एंड सुपर सोल आत्मा। हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हमारे चेते गुरु हैं, बाहर गुरु के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और शास्त्र और वेद के रूप में, इन तीनों के रूप में कृष्ण हमारे मालिक है। ये तीन यही बात कहेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है गुरु यही सिखाएगा कि कृष्ण प्रभु है, आपके मालिक है, मैं आपका मालिक नहीं हूं, कृष्ण आपके मालिक है। ये किसने बताया पहले भागवत में, ब्रह्मा जी को नारद ने पकड़ के कहा, पिताजी ये धरती आपकी हथेली के ऊपर ऐसे है जैसे अखरोट पड़ा है, तो इसका तो आपने ही पैदा किया, आप ही भगवान है ना। ब्रह्मा जी ने कान में उंगली डाल के कहा, नहीं 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 नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, अरे मैं तो कमल की डांडी के ऊपर एक फूल के ऊपर पैदा हुआ हूं, मैंने तो बाद में भगवान को, मेरे को पता भी नहीं कि मैं जन्म मेरा कहां से हुआ, बहुत तपस्या के बाद भगवान विष्णु को मैं देखा, भगवान विष्णु साक्षात भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने तो ये मान लिया कि मैं भगवान नहीं हूं, नारद ने जाकर कहा था कि आप भगवान हो, नारद तो शिष्य है उनका, पुत्र है, उसका अधिकार है उसको अपने पिता को सम्मान देने का, लेकिन पिता भी कहने लगा कि मैं भगवान नहीं हूं। तो ब्रह्मा की शिक्षा के अंतर्गत जो गुरु है वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं, जो गुरु कहता है मैं भगवान हूं तो फिर वो सिद्धांत सारा बिगड़ गया। गुरु कहेगा कृष्ण प्रभु है, ये गुरु वही है जो कृष्ण को भगवान मानता है, या कृष्ण हमारा प्रभु है, यही शिक्षा देगा तो गुरु है, नहीं तो गुरु नहीं है। और फिर ये तीनों जब कृपा करेंगे तब भगवान की प्राप्ति होना संभव है। अब तीन की बात कह दें, आगे आगे अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था, साधन क्या है। अब दो प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, हम क्या हैं, भगवान के दास हैं, हम दुख क्यों भोग रहे हैं, भगवान को भूलते हैं, तो माया हमको दुख देती है। माया क्यों दुख देती है, हमें याद दिलाने के लिए कि कृष्ण को वापस याद करो, मत भूलो। माया कोई हमारी शत्रु नहीं है, लेकिन वो हर वक्त हमको इसलिए दुख देती है ताकि हम भगवान की तरफ मुख करके और अपनी जान छुड़ा के यहां से चले जाएं। तो माया हमारी दुश्मन नहीं है, भगवान की शक्ति है, हमको भगवान याद दिलाने के लिए इस दुनिया में दुख देती है। तो दुख भी माया का हमारे लिए भगवान प्राप्ति का साधन है, तो इसलिए माया का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कभी कहते, माय डिसाइपल्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया, दिस इज नॉट गुड, देयरफॉर दे आर फॉलिंग इन द कल्चर्स ऑफ माया। आई एम ऑलवेज प्रेइंग टू द माया, मैं रोज माया को प्रार्थना करता हूं कि मेरे को कृष्ण की सेवा में सहयोग करो। तो माया का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। माया किसकी है, कृष्ण की है। वो हमको दुख क्यों दे रही है, क्योंकि हम कृष्ण को भूले हैं। इसका मतलब वो हमको दुख दे रही है ताकि हम कृष्ण को याद कर लें। तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और उसको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको कृष्ण की सेवा में सहयोग करो, हमारे ऊपर कृपा करो कि कृष्ण हमारा प्रभु है, शास्त्र में और गुरु ने हमको ये सिखाया है, अब आपके यहां रह रहे हैं, ये स्थान आपका है, आप मालिक हो यहां की, आप कृपा करके कृष्ण की सेवा में हमको लगाने में सहयोग करो, आशीर्वाद दो। तो ये ठीक प्रार्थना है इस संसार के अंदर बाहरंग शक्ति को करने के लिए, और ये रोज करनी चाहिए, क्योंकि रोज माया की गोद में गिरते हैं। ये सावधानी बहुत जरूरी है, दृढ़ वर्त यत्न यही करना चाहिए, नहीं तो माया इस दुनिया में भुलाने के लिए तो सौ उसके पास नाना प्रकार के रंग हैं जिससे वो हमको भुला सकती। तो कहें कि हमको मत भुलाओ, भगवान को याद करना है, तो एकदम कहे कि हाँ ये तो भगवान को, लेकिन वो आपके कहने से नहीं सुनेगी, वो आपकी दिल का एक्सरे निकाल कर देखेगी। उसके पास वो बड़ी होशियार है, अंदर देखती है कि ये कह क्या रहा है, कह रहा है कृष्ण को, लेकिन सोच क्या रहा है, सोच रहा है कि तू छोड़ के देख तो कृष्ण को छोड़ता हूं कि नहीं। वो सब समझ जाती है कि हृदय में क्या है हमारे। बच्चा रोता है, मां जानती है ना कि क्यों रो रहा है, मालूम है ना। एक बार एक बच्चा जो अचानक रोया, मां काम करती हुई रसोई से दूध को चढ़ा हुआ छोड़ा, हाथ में आटा था रोटी का, भागती हुई गई, बच्चे को उठाया, गोद में चुप करा दिया, एक लड्डू दे दिया, बिठा दिया। 15-20 दिन के बाद माता जी कुछ भी नहीं कर रही थी, बाहर बैठ के मूंगफली खा रही थी, सर्दी के मौसम में धूप में। बच्चा जोर जोर से रोया और चिल्लाया और चिल्लाया, मां तो और मूंगफली खा रही। बच्चा रो रो के थक गया, तब आके माँ को कहता है, उस दिन एक बार रोया, आप भाग के आ गई, मेरा देखभाल किया, आज कब से रो रहा हूँ, आप अभी तक हमारी सुनती क्यों नहीं। माँ ने देखा, बेटा उस दिन तुम मेरे लिए रो रहा था, आज लड्डू के लिए रो रहा है। इतना माँ को भी पता लगता है कि ये बच्चा लड्डू के लिए रो रहा है कि माँ के लिए रो रहा है। आपको पता लगता है ना, आपका बच्चा रोता है तो क्या असली नकली रोना आपको मालूम होता है कि नहीं होता है? हाँ पता लगता है ना क्यों रो रहा है, तो आपको पता लगता है कि उस माया माँ को पता नहीं लगेगा तुम किसके लिए रो रहे हो, तो आपसे भी कहीं गुजरी है क्या। तो प्राय हम दिखता है रोते हैं, लेकिन अंदर इच्छा कुछ और होती है, और इसलिए हृदय को देखती है। हृदय हृदय में जब भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा तब माया प्रार्थना एकदम सुन लेगी। लेकिन अभी हम माया को ही चाहते हैं, कहते हैं कि हमें कृष्ण चाहिए, लेकिन चाहते हैं हम असल में माया को ही, ये हमारी। तो अब तो ये साधन क्या बताया, साधन बताया कि इस संसार में जीव का स्वरूप कृष्ण का दास है, और वो कभी बाहरंग शक्ति के चरण में जाता है तो दुख भोगता है, और दुख भोगने का कारण है भगवान श्री कृष्ण से बेमुख होना। बेमुख का मतलब मुंह कृष्ण की तरफ न करके दुनिया की तरफ करना। और माया उसको कैसे तकलीफ देती है, वो उसको ख्वाब दिखाती है, ख्वाब समझते हैं ना, उसको स्वप्न दिखाती है, इसके बाद तुम्हारा ये हो जाएगा, बस तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा ये हो गया, अभी अगले साल प्रोमोशन होगा, उसके अगले साल इतना लोन मिल जाएगा, उसके अगले साल अपना बंगला बन जाएगा, बस अपनी गाड़ी आ गई, उसमें कोई ये माया ऐसे जाल फैला रखा है कि हमने प्लान 100 साल का नहीं 1000 साल का बनाया है और जिएंगे 10-15 साल बाकी। आज 60 साल का आदमी ऐसा प्लान बनाता है कि 500 साल और जिएगा और उम्र उसकी बाकी 15 साल भी नहीं बची है। प्लान देखा है कैसा होता है हमारा, कितना लंबा प्लान होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जब ये सारे डिलीट करके एक डिलीट मारना है, एक ही प्लान है कि कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति और प्रेम हो, बाकी सब के ऊपर डिलीट मार दिया तो समझ लो कि दुखों से एकदम मुक्त हो गए। ये कहा था चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, तुम्हारे मुखार से दुख आए, तुमको दुख नहीं है। मानो कोई पूछे सनातन गोस्वामी आपको दुख क्यों नहीं है, बोला इसलिए कि चैतन्य महाप्रभु के सामने खड़े हो, कृष्ण उन्मुख हो गए, अब आपके लिए दुख क्यों, अब दुख खत्म हो गया, जब तक भगवान के सामने नहीं था तब तक दुख था, अब तो भगवान के सामने खड़े हो ना, अब दुख क्यों होगा, भगवान के सामने आने से दुख खत्म हो जाता है। सूर्य उग गया तो अंधकार अपने आप चला जाएगा, अंधकार थोड़ी ये कहेगा कि मैं एक महीने से यहां रह रहा हूं नहीं जाऊंगा यहां से, सूर्य उग गया हूं अंधकार चला जाएगा। तो यहां दूसरी बात ये बताई, और माया क्या करती है इस दुनिया के अंदर, हमारे को बहुत बड़े प्लान बना के ऐसा बांध के रखती है, ऐसा बांध के रखती है, ऐसा बांध के रखती है कि कृष्ण याद न आए, इसलिए उससे छूटने के लिए कृष्ण ने कृपा करके साधु शास्त्र को भेजा है, और शास्त्र भी वेद पुराण को भेजा है, दो शब्द लिखा वेद और पुराण, वेदों के अंतर्गत आजकल के लोगों के लिए भगवद गीता उपनिषद के रूप में वेदों का सार है, सारे वेदों का सार भगवद गीता है, सर्व उपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन, तो गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सारे वेदों को भगवद गीता के रूप में हमको दे दिया है, एक शास्त्र हो गया वेदों का प्रमाण। और दूसरा, वैसे भी महाभारत को पांचवा वेद बोलते हैं और महाभारत में भगवद गीता है, तो ये अपने आप में वेद का हमारे लिए जो कलयुग के लोग हैं उनके लिए ही व्यास देव ने महाभारत लिखा और उसी के अंदर भगवद गीता को रखा, और इसलिए भगवद गीता को उसके अंदर रखा कि कलयुग के लोग सारे नीचे स्तर के हैं, कोई भी ब्राह्मण क्वालिफाइड है नहीं जो वेद को पढ़ सके, इसलिए ये वेद को भगवद गीता के रूप में महाभारत में रखता हूं ताकि सब लोग इसका अध्ययन कर सकें, नहीं तो अध्ययन कर ही नहीं सकेंगे। ये बहुत बड़ी युक्ति के साथ व्यास देव ने वेद को महाभारत के अंतर्गत भगवद गीता के रूप में सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया, स्त्री शूद्र वैश्य सबके लिए, नहीं तो वेद पढ़ने का अधिकार कभी गुरुकुल में तो जाती नहीं थी लड़कियां, तो कहां से पढ़ेगी, ये तो पुरानी प्रणाली तो ही है कि स्त्रियां लड़कियां गुरुकुल में नहीं आती थी पढ़ने, और गुरुकुल में ही वेद पढ़ाते थे पहले, इसीलिए प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में लिखा है गीता इज कॉल्ड गीतो उपनिषद, ये गीता उपनिषद है, ये वेद है, लेकिन इसको पढ़ने का अधिकार सबको है, स्त्री को पुरुष को सबको है। एक तो ये भगवान ने वेद दिया, और पुराण में कौन सा पुराण दे दिया, भागवत पुराण दे दिया, भागवत पुराण के अंदर सारे वैदिक साहित्य का पक्का हुआ फल है भागवत पुराण। तो पेड़ काहे के लिए, पेड़ घर में काहे के लिए रोपते हैं, पेड़ क्यों घर में लगाते हैं, फल खाने के लिए ना, तो ये फल है सीधा सा भागवत, तो पुराण से हमको लेना चाहिए भागवत पुराण। और चैतन्य महाप्रभु का मत ये भागवतम पुराणम अमलम, ये भागवत ही पुराण हमारे लिए है और भगवद गीता ही वेद हमारे लिए है। इन दो को साधुओं के संग में, कौन सा साधु, जो कहता है कृष्ण प्रभु है, ये साधु की परिभाषा, उस साधु के संग में जो हमको ये सिखा दे कृष्ण ही हमारे मालिक हैं, हम उनके दास हैं, ये साधु, ये साधु की परिभाषा है। कोई भी साधु नहीं, लाल कपड़े वाला हर एक साधु, तो रावण भी आ गया था सीता को उठा के चला गया था, वो भी कपड़े साधु पहन के आया था, तो हर कपड़े वाला लाल कपड़े वाला साधु है ये इसका अर्थ नहीं, और हर शास्त्र वेद है ये भी इसका अर्थ नहीं। गीता वेद है वेद व्यास के अनुसार आज कलयुग के लोगों के लिए, और नारद और वेद व्यास के अंतर्गत भागवत ही कलयुग के लोगों के लिए पुराण है, और उन साधु के संग में बैठकर इन दोनों का अध्ययन करना चाहिए जो कृष्ण को परम पुरुष भगवान मानता है और अपने को कृष्ण का दास मानता है। ये पैरामीटर है। जो ये नहीं मानता है वो भगवान के शब्दों में कृष्ण को नहीं जान सकता है, तो माया की गोद में रहेगा, ऊपर नीचे घूमता रहेगा संसार के अंदर, स्वर्ग से लेकर और नीचे के लोगों तक घूमता रहेगा, लेकिन वो कभी भी इस माया के बंधन से नहीं छूट सकता है। ये इन शब्दों का अर्थ है, अभी तक हमने यहां तक पढ़ा। और अगले श्लोक में साधे साधन क्या है इसका अर्थ देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते, वेद शास्त्र कहे, पहले बात कैसे करते हैं, वेद शास्त्र कहे, मैं कहूं ये नहीं कहते, भगवान होते हुए भी ये शब्द क्यों कहा वेद शास्त्र कहे, कि कोई भी ये नहीं कहे कि मैं ये कह रहा हूं, मेरा ओपिनियन ये है, ऐसा कहने वाला नॉनसेंस है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ओपिनियन, प्रभुपाद जी से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ओपिनियन, तुम्हारे विचार का क्या महत्व है, शास्त्र का विचार क्या है, वेद का विचार क्या है, ये बात करो। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण प्रापय संबंध भक्ति प्रापय साधन, साध्य क्या है कृष्ण, उसका साधन क्या है भक्ति, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। साध्य क्या है कृष्ण, किसको प्राप्त करना है, कृष्ण प्राप्य साध्य क्या है, कृष्ण की प्राप्ति, साधन क्या है भक्ति, लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए तीन शब्द कहे चैतन्य महाप्रभु ने, संबंध अभिधेय प्रयोजन। ये तीन शब्द सवाय गौड़ीय वैष्णव के और किसी को इस सिद्धांत का पता भी नहीं। और भागवत के चार श्लोकों में भागवत जो भगवान ने चार श्लोकों में क्यों भागवत दी भगवान ने ब्रह्मा जी को, चार श्लोकों में ही भगवत गीता की चतुर्श्लोकी क्यों बोलते हैं, चार शब्द वेदों का वाचिक है, चार मतलब वेद, इसका मतलब ये वेद के तुल्य है, ये वेद ही है, इसलिए चार श्लोक है, इट इज इन फोर वर्सेस मीन्स वेद, चार वेद है, चार वर्ष में भागवत है, ये पूरा वेद है, स्पेशली टू गिव दी रेस्पेक्ट टू द वेद इज पुट इन टू फोर। वेद को ब्रह्मा के चार मुख, उनसे चार वेद निकले, ब्रह्मा को चार श्लोकों में भागवत दी, ये वेद का आदर रखा है कि ये वेद के वेद ही है, तो चार शब्द वेद का वाचक है। अब कृष्ण की प्राप्ति के लिए पहले संबंध चाहिए, भक्ति के लिए अभिधेय चाहिए और प्रेम के लिए प्रयोजन चाहिए। तो ये तीनों शब्द को समझाने के लिए आज का समय नहीं है, अगर मंगलवार के सत्संग में इन शब्दों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। तो साधन क्या है, साध्य क्या है, ये सनातन गोस्वामी के चार प्रश्न याद कर ली, मैं कौन हूं, मैं दुनिया में दुख क्यों भोग रहा हूं, साधन क्या है, साध्य क्या है, साधन साध्य चार चीजें हो गई। मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, मैं जीव हूं, मैं दुख इसलिए पाता हूं कि कृष्ण से मैं कृष्ण को भूल गया हूं, माया मुझे दुख दे रही है क्योंकि मैंने कृष्ण को भूला है, गलती मेरी है माया की नहीं है। और फिर साध्य क्या है, कृष्ण प्रेम ही हमारा लक्ष्य है, साध्य कृष्ण है भक्त और उसका साधन भक्ति, ये सरल उत्तर है। फिर इस भक्ति की परिभाषा और कृष्ण प्राप्ति में तीन शब्द हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध का मतलब कृष्ण के बारे में ज्ञान की प्राप्ति, अभिधेय का मतलब कृष्ण की सेवा में लगना, प्रयोजन का मतलब कृष्ण से के लिए प्रेम हृदय में प्रकट होना। संबंध का मतलब ज्ञान, कृष्ण के विषय का ज्ञान संबंध है, कृष्ण की सेवा में लगना अभिधेय है और कृष्ण के प्रेम की उत्पत्ति होना प्रयोजन है। तो ये तीन शब्द है, ज्ञान कृष्ण संबंधी ज्ञान, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के प्रेम की उत्पत्ति, इन तीन शब्दों का सरल अर्थ ये है। आगे इन शब्दों के ऊपर और महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर मंगलवार को सायंकाल को सत्संग करेंगे। आप सबका धन्यवाद। इस किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? कल सुबह भागवतम क्लास अनाउंस भले करें, लेकिन आएगा कौन उसी को बताइए जो आएगा। सबको बता के डिस्टर्ब मत करो। लेकिन एक फायदा है, डिस्टर्ब होंगे तो सोचेंगे जाते हुए, जाना तो काम पे, लेकिन भागवत क्लास हो रही होगी, भागवत क्लास होगी, जगन्नाथ मंदिर का दर्शन खुला होगा, तो बता दो फायदा है। कम से कम जाएंगे अपने काम पे, याद तो मंदिर को और भगवान को करते जाएंगे, फिर भी कुछ फल मिलेगा। स्मरण तो होगा ना, फिर भी फल मिलेगा ना। तो कल सुबह भागवतम क्लास 8 से 9 बजे तक है, जिसके पास समय है वो आए, नहीं तो अपने काम पे जाते हुए भागवत और भगवान का स्मरण करते हुए जाए।